आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS रेडियो मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
क्वाड यानी ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के संगठन ग्रुप की स्थापना हुई थी 2007 में, लेकिन 2017 तक ये सदस्य देश बिल्कुल भी सक्रिय नहीं रहे। 2017 में जैसे इनमें जान डाली गई और कह सकते हैं कि अब क्वाड बैठक का महत्व या बैठक आयोजन दिखाई देने लग गया है। इस साल की शुरुआत में यानी मार्च में कोविड की वजह से क्वाड देशों की वर्चुअल बैठक हुई और अब 6 महीने के अंदर ही दूसरी बैठक बुलाई गई है। क्वाड के संबंध में आज बात की है प्रोफेसर पुण्येंद्र जैन के साथ में, जो जुड़े हुए रहे एडिलेड यूनिवर्सिटी की एशियन स्टडीज के साथ और जिन्हें 2020 में जापान सरकार की तरफ से ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से भी सम्मानित किया गया। जब क्वाड की पहली बैठक हुई थी तो चीन की तरफ से बयान आया था कि दुनिया के देशों को किसी भी तरह का एक्सक्लूसिव ब्लॉक नहीं बनाना चाहिए। 6 महीने के अंदर ही ये दूसरा सम्मेलन हो रहा है तो चीन, जिसे विस्तारवादी चीन कहा जाता है, उसके प्रति इन 4 देशों का कोई सीधा संदेश है? तो प्रोफेसर पुण्येंद्र जैन कहते हैं,
देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि जो पहली मीटिंग हुई थी वो ऑनलाइन हुई थी और ये 6 महीने के अंदर अंदर दूसरी मीटिंग जो आज होने वाली है जी। तो इसका मेन कारण आपने जैसा पूछा, चाइना तो है, पक्का ही है, चाइना के लिए ही और चाइना के विरोध में ही इस तरीके की एक क्वाड मीटिंग बहुत जल्दी से फिर से प्रेसिडेंट बाइडेन ने बुलाई है। लेकिन उनका जो एजेंडा है वो सीधे चाइना का नाम नहीं लेना चाहते हैं। तो उस एजेंडा में है डिफेंस और सिक्योरिटी, है पैंडेमिक जो है, महामारी फैले हुए COVID-19, उसको कैसे संभाला जाए, फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं वो, तो आप जो भी देखो, आप पैंडेमिक देखिए, डिफेंस सिक्योरिटी देखिए या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात देखिए, ये सब में चाइना निकल करके आता है। तो ऐसा लगता है कि चाइना के अपोजिशन में ये क्वाड नई इश्यूज लेकर के और मिलके, ये 4 देश मिलके अपना काम करना चाहते हैं, लेकिन चाइना का नाम उसमें नहीं लेते हैं। चाइना फैक्टर कैनॉट बी डिनाइड।
अच्छा, आपने क्योंकि अभी बात की है डिफेंस की भी, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी, तो इधर जो ऑस्ट्रेलिया, US और UK के बीच में जो ट्राइलेटरल ट्रीटी साइन हो गई है, तो इसका असर भारत के ऊपर कुछ पड़ा है? क्योंकि देखिए, उसके फौरन बाद ही भारत और फ्रांस दोनों के बीच में वार्तालाप शुरू हो गया और इस बात की भी एक गारंटी दी गई कि जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो एक तरफ तो फ्रांस, क्वाड नेशंस की बात करें तो US और ऑस्ट्रेलिया दोनों से वो नाराज है और उसी में से एक नेशन जो है फ्रांस के साथ उनकी बातचीत चल रही है, तो इस सब का क्या असर पड़ेगा?
देखिए, एक तो ये है कि जो ये नया जो पार्टनरशिप हुआ है US, UK और ऑस्ट्रेलिया में, जिसके अंतर्गत अब जो है US और UK मिल करके ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन देगी या बनाएगी, तो फ्रांस तो बहुत आक्रोश में है, लेकिन US और फ्रांस में अभी कुछ लगता है कि थोड़ा सा उनकी रिलेशनशिप में कुछ नमी आई है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस का रिलेशनशिप अभी बहुत तनावपूर्ण है।
जी, मैं पूछना चाहती थी कि फ्रांस का जो इंडो पैसिफिक में भी काफी इन्वेस्टमेंट है और ये जो पनडुब्बी की डील हुई है उसका मकसद भी यही है कि इंडो पैसिफिक में प्रेजेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग दिखे। भारत दोनों तरफ है?
देखिए, भारत तो कमिटेड है क्वाड के लिए
जी।
तो अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ कमिटमेंट है भारत का, उसमें भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत साफ तौर पे कहा है कि भारत क्वाड के पार्टनरशिप पे काम करना चाहता है, लेकिन साथ साथ भारत की जो विदेश नीति है, उस विदेश नीति में हम सब जानते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है कि हम किसी एक पक्ष के साथ नहीं रहेंगे पूरी तरीके से।
जी
तो अपने ऑप्शंस ओपन रखेंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि भारत रशिया के साथ
भी है
काफी
जी।
तालमेल रखता है। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने जो इंडिया के प्रधानमंत्री से बात करी इसके तुरंत बाद, उसका देखिए मैं ये समझता हूँ कि अभी तो फ्रांस इज द थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर्स ऑफ आर्म्स टू इंडिया,
जी
और अभी इंडिया में वहां पे नए सबमरीन्स बनाने की योजना है। तो फ्रांस को ये लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया के साथ बातचीत करके और किसी तरीके से फ्रांस की जो पनडुब्बी है या सबमरीन्स है उसको इंडिया के साथ काम किया जाए। तो
जी
मुझे ये लगता है कि ये एक बहुत बड़ा, जो कि वार्तालाप में ऐसी कुछ बात नहीं हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि चूंकि इंडिया अभी वो अपनी पनडुब्बियां बनाना चाहता है, क्योंकि इंडिया की पनडुब्बी बहुत पुरानी है और एक वहां पे है वो पनडुब्बी भी कोई बहुत अच्छे किस्म की नहीं है। तो इंडिया का ये प्लान है कि नए नए पनडुब्बी बनाओ। तो अभी इंडिया ने इनवाइट किया है नेशंस डिफरेंट कंट्रीज को कि तुम अपना अपना बिट करो। तो उसमें मुझे लगता है कि फ्रांस का ये मकसद होगा कि किसी तरीके से वो इंडिया की जो ये सबमरीन की जो प्रोजेक्ट है वो फ्रांस के पास आ जाए। तो वो एक बहुत बड़ा, इसलिए उन्होंने कहा कि हम साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। उसमें अफगानिस्तान की भी बात आई,
हाँ
उसमें इंडो पैसिफिक की भी बात आई। तो
जी
ये सब लेकर के हो सकता है कि ये एक रक्षा का जो सौदा है उसकी एक अंडरलाइंग आइडिया होगा कि किस तरीके से भारत और फ्रांस साथ मिलकर काम कर सकते हैं।
हाँ, क्योंकि इंडो पैसिफिक में फ्रांस की प्रेजेंस तो काफ़ी स्ट्रांग है ही।
बिल्कुल
और इस समय क्वाड समिट के दौरान जो है बाइलेटरल टॉक्स भी हो गई हैं, ऑस्ट्रेलिया भारत और भारत और यूएस। तो आगे इसका भविष्य आप क्या देखते हैं? क्या कोई क्वाड प्लस भी हो सकता है?
देखिए, क्वाड प्लस की बात चल रही है, लेकिन अभी लगता है कि जो जो चार कोर कंट्रीज हैं प्लस में, हो सकता है कि और ऑब्जर्वर पार्टनर्स को ला सकते हैं। लेकिन सबसे पहले कि इस क्वाड की क्लियर ऑब्जेक्टिव, ये क्या चीज करना चाहता है और कहाँ पहुंचना चाहता है, ये
जी
अभी क्लियर नहीं है, इसकी स्पष्टता नहीं है। कुछ
जी
बातें हैं कि वैक्सीनेशन के लिए हम कोऑपरेशन करेंगे, इंडिया बनाएगी, ऑस्ट्रेलिया डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जापान पैसा लगाएगा, फिर ये भी बात है कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग
हाँ
इंडो पैसिफिक में करेंगे, लेकिन अभी कोई कॉन्क्रीट चीज, जब 6 महीने पहले भी ये बात हुई थी लेकिन कोई कॉन्क्रीट ऑपरेशनलाइजेशन नहीं हुआ उन चीजों का।
तो ये जो क्वाड जो कुछ साल पहले शांत हो गया था, अभी थोड़ा सक्रिय हुआ है, और जैसे आपने कहा कि स्पष्टता, और वो सिर्फ कागजों पे नहीं रह जाए तो उसका प्रभाव भी स्पष्ट तौर पर दिखना शुरू हो जाए।
एक गठबंधन है, विशाल गठबंधन है चार बड़े देशों का, लेकिन इसमें आपने क्वाड प्लस की बात करी, जैसे हमारे 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं आसियान, तो
हाँ
उनका चाइना के साथ काफी अच्छा तालमेल है और उनका यूएस के साथ और दूसरे जापान के साथ भी अच्छा तालमेल है। तो वो 10 कंट्रीज ये चाहते हैं कोई ऐसा बैलेंसिंग हो कि ना वो क्वाड के साथ रहे ना वो फुल्ली चाइना के साथ जाए। तो
जी
क्वाड को ये बताना पड़ेगा इन कंट्रीज को कि हम क्या करना चाहते हैं जिससे उनकी जो राष्ट्रीय हित है वो राष्ट्रीय हित बना रहे। तो
जी
क्वाड के लिए अभी एजेंडा और इसकी जो परसुएशन है दूसरे कंट्रीज को एक्सेप्ट करें, उसके लिए थोड़ा अभी इनको पहल करनी पड़ेगी और एक स्पष्ट रूप से एक नया ब्लूप्रिंट या नया मार्गदर्शन देना पड़ेगा, बिना उसके बहुत मुश्किल है इस बात का।
एक मजबूत कदम उठाना पड़ेगा।
जी, क्योंकि
तो
चाइना की बात करी तो चाइना ने तो ये कह दिया इस बार कि देखो ये चार कंट्रीज जो है चार बीमार कंट्रीज हैं, और ये बीमार कंट्रीज हैं ये एक ही हॉस्पिटल के एक ही वार्ड में रह रहे हैं, लेकिन सबकी बीमारी अलग अलग है। तो मतलब इन चारों देशों के अलग अलग राष्ट्रीय हित हैं, चारों कुछ अलग अलग बातें सोचते हैं। तो चाइना तो काफी क्रिटिकल है और चाइना को लगता है कि ये बात कुछ ज्यादा जमेगी नहीं, क्योंकि ये चाइना के अगेंस्ट में है और इसमें कोई पॉजिटिव बातें नहीं है, लेकिन वो तो चाइना का अपना व्यू है। लेकिन ये चार कंट्री काफी कमिटेड है कि हम लोग इस पार्टनरशिप को, इस गठबंधन को बढ़ाएंगे और इसमें बहुत सारी चीजें करनी है वो हम करेंगे। जी,
भारत के लिए क्वाड कितना महत्वपूर्ण है?
भारत के लिए देखिए क्वाड बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। उसके कारण मैं आपको बताता हूँ। एक तो यह है कि भारत एक मालाबार एक्सरसाइज नेवी की एक्सरसाइज होती है जो कि सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स
और
के साथ
भारत के
किया,
बीच थी जी,
फिर जापान उसमें शामिल हुआ
और अब
और
ऑस्ट्रेलिया भी
इसी
है
साल ऑस्ट्रेलिया शामिल हो गया, तो एक
जी।
कोल्ड वो भी बन गया। तो उसमें एक इंडियन गवर्नमेंट क्लियरली देख रही है कि ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट भागीदार के रूप में है भारत के लिए। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया का संबंध देख लीजिए, भारत जापान का संबंध देख लीजिए, भारत अमेरिका का संबंध देख लीजिए, सब काफी मतलब काफी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो इस मामले में भारत ने सोच लिया है कि तीन कंट्रीज के साथ काम करना है क्वाड के लिए। अब इसमें भारत की राष्ट्रीय हित क्या, इसमें कैसे आगे बढ़ती है, उसका कारण ये कि भारत को आर्थिक देखना है, उसकी उसकी जो स्ट्रेटजी है उसको देखना है, उसके जो डिफेंस रिक्वायरमेंट्स है उसको देखना है। इन सबों को देखते हुए भारत के लिए सर्टनली अमेरिका और जापान ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण देश हैं, और अभी ऑस्ट्रेलिया भी महत्वपूर्ण देश हो गया। तो इसको लेकर के भारत ने क्वाड के प्रति काफी अच्छा पॉजिटिव सकारात्मक रुख लिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, फिर मैं बताना चाहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि भारत और देशों के साथ अपना सहयोग और अपना पार्टनरशिप नहीं बनाए रखेगा। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रूस, कि रूस और भारत एक बहुत अच्छा अभी भी संबंध है दोनों में, जबकि जापान का, अमेरिका का और ऑस्ट्रेलिया का रशिया के साथ संबंध बहुत खराब है।
पुण्यन जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद कहना चाहूँगी आपके समय के लिए और इस तरह से विस्तार से क्वाड का महत्व और विस्तारित जानकारी देने के लिए।
आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा अनिता जी, धन्यवाद।
जी धन्यवाद। SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।